हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 34 एंड 35। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो के है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानते मरणदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्या नपि योद्धवीरा मया हतांस्त्वं जहिमावितष्टा युद्धस्वजेता सिराणे सपत्ना। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या नपि योद्धवीरा माया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेता सिराणे सपत्ना। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या नपि योद्धवीरा माया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेता सिराणि सपत्ना। शब्दात् द्रोणम च अर्थात द्रोण, भीष्मम च भीष्म भी, जयद्रथम च जयद्रथ भी, कर्ण यानी कर्ण भी, तथा और अन्य अपि योद्धवीर, अन्य मतलब दूसरे जितने भी हैं, निश्चय से सारे योद्धवीरान महान योद्धा जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं। मया हतांस्त्वम मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, हतान मतलब पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम क्या करो, फिर तुम्हें क्या करना है, जहिमा व्यतिष्ठा तुम मारो, जस्ट मेरे हाथों से पहले से ही मरे चुके हैं, तुम सिर्फ एक्ट करो। मा व्यतिष्ठा विचलित होने की जरूरत नहीं है, मा विचलित, मा मतलब नहीं, व्यतिष्ठा मतलब विचलित मत हो। युद्ध स्वजेता से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। जेतासी मतलब जीत जाओगे, युद्ध स्व लड़ो जीत जाओगे, रणे सपतना इस युद्ध भूमि में, सपतनान का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं। अनुवाद, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त कर दोगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उनकी कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं के का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयते कीरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अध्याय 11 विराट स्वरूप। हमने देखा कि जब भगवान ने अर्जुन के निवेदन से अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया तो उसको देखकर अर्जुन काफी भयभीत हो गए, क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि आप इस भयानक स्वरूप में हो कौन, तब भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूँ, लोक क्षय प्रवृद्धो कृत प्रवृद्धो, मैं इस पूरे संसार को क्षय करने के लिए, नाश करने के लिए आया हूँ। क्योंकि अर्जुन ने देखा था कि भगवान के अनेकों अनेकों मुख हैं और सारे जितने भी बड़े बड़े सेनापति हैं, जो भी योद्धा हैं, वो भगवान के मुखों की ओर जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं? यथा नदीना बहवो अम्भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्य बीविश वलंत। जिस प्रकार नदियां बहुत ही वेग के साथ समुद्र की ओर बढ़ती हैं, या यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, या फिर जिस तरह पतंगा जो है वो जलने के लिए अग्नि की ओर आता है, उसी तरह से सारे भक्त हो चाहे अभक्त हो, वो भगवान की ओर जा रहे हैं और भगवान समय बनकर सबका विनाश कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो अर्जुन इस स्वरूप को देखकर बहुत भयभीत होते हैं और भगवान से एक निवेदन करते हैं। श्लोक नंबर 31 में वे कहते, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छन्ति भवन्त माध्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्त। आख्या ही मे को भवान उग्रम, आप इस उग्र रूप में हो कौन, आप क्या चाहते हो, नहि प्रजानामि तव, मुझे आपका प्रयोजन नहीं पता, आप मुझे बताओ कि आप कौन हो और आपका उद्देश्य क्या है। फिर भगवान उसको बताते, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमीह प्रवृत्त रिते पी त्वाम न भविष्यन्ति स्वरे, तुम्हारे अलावा और भविष्य में कोई रहने वाला नहीं है, सब जितने भी यहाँ पर तुम्हें योद्धा दिख रहे हैं ना, वो सब मेरी योजना से मारे गए हैं, इसलिए तुम क्या करो, तस्मा तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन, सारे शत्रुओं को जीतो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो और भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य को भोगो, मयवेते निहत्ता पूर्वमेव, मेरे योजना के द्वारा वो पहले से ही सारे मारे जा चुके हैं, इसे तुम क्या करो, निमित्त मात्रम भवसाव्यस। तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। आपको केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है और कार्य तो सारा मैं ही करता हूँ, मैंने ही किया है। तो मानो अर्जुन को मन में ऐसा हो रहा हो कि शायद बड़े बड़े योद्धाओं को तो भगवान ने मारा है, परंतु भीष्म और द्रोण को मैं मारूंगा तो उसका अपराध तो मुझे लगेगा ना, निमित्त भी मुझे बनना है तो मुझे कहीं अपराध न लगे। और दूसरा ये भी आशंका है कि भीष्म पितामह तो अजय हैं, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो वो मरेंगे कैसे। अर्जुन को जो हिचकिचाहट हो रही है, जो विचलित हो रहा है अर्जुन, उसको भगवान आश्वासन देते हैं। आज के श्लोक में वे कहते हैं, तुम्हें किसी भी चीज के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी योद्धा के लिए, चाहे वो सेनापति भीष्म या तुम्हारा गुरु द्रोण ही क्यों ना हो, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान नाम लेके बताते हैं, द्रोणम च, वो गुरु द्रोण जो कि तुम्हारा गुरु है, परंतु उसने अनीति का साथ दिया है, इसलिए उसका मरना अनिवार्य है। और भीष्म पितामह भले ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेते हों, भले ही वो जानते हैं कि कौरव सभा में सारा जो भी हुआ अपराध है, लेकिन फिर भी उन अपराधियों का साथ दिया है उन्होंने, इसलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित है। और आज यहाँ पर एक नया नाम भगवान ने उच्चारण किया है, जयद्रथम। भगवत गीता में इससे पहले जयद्रथ का नाम नहीं आया, इससे पहले जब बताया था भगवान ने, विश्वरूप जब भगवान ने अपना दिखाया था, तब अर्जुन उसको देखकर बोलते हैं, भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथा, तो सूत पुत्र करण का नाम दिया, भीष्म का दिया, द्रोण का दिया, लेकिन जयद्रथ यहाँ पर फर्स्ट टाइम। और भगवान अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि भले ही जयद्रथ ने कठोर तपस्या प्राप्त करके एक वरदान प्राप्त किया है, जिसमें कि उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि युद्ध में एक दिन वो पांचों पांडवों पर भारी होगा, है ना, वो जीत जाएगा पांचों पांडवों से। तो ये वो दिन था जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो शिवजी ने जयद्रथ को कहा था कि तुम चार पांडवों पे तो भारी पड़ सकते हो, लेकिन यदि अर्जुन वहां पर होगा तो तुम अर्जुन से आगे नहीं निकल सकते, अर्जुन को नहीं जीत सकते। तो फिर इन्होंने, कौरवों ने एक तरकीब निकाली थी कि अर्जुन को चेदी नरेश जो है ना वो बहुत दूर लेके गया था, और जयद्रथ जो है वो अकेला चार पांडवों को अभिमन्यु के पास जाने से रोक सका था। अभिमन्यु ने पहले सबको बताया कि मुझे चक्रव्यूह में जाना तो आता है परंतु निकलना नहीं आता। तब ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर ने कहा कि आपको आने की चिंता नहीं करनी है, आप अंदर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करो, मैं भीम और नकुल और सहदेव वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तो फिर हम सारे योद्धाओं को मार देंगे ना, तो फिर आप, हम वापस आ जाएंगे आराम से, आप आगे चलो, खाली इसके अंदर कैसे प्रवेश करना है वो आप हमें आगे आगे चलो ताकि हम सब साथ में जाएंगे। और जैसे अभिमन्यु अंदर चले गए तो अकेले जयद्रथ ने चारों पांडव भ्राताओं को, अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन चारों को अकेले जीता था। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भले ही जयद्रथ जो है उसको एक दिन तुम पांडवों पर भारी होने के लिए वरदान मिला है, परंतु फिर भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुरु द्रोण जो कि तुम्हारे गुरु महाराज हैं, भीष्म जो कि इच्छा मृत्यु का कवच पहनकर यहाँ पर आए हैं, और जयद्रथ जिसको ये वरदान है कि तुम पांचों पर एक दिन भारी होगा, और ये करण जो सूत पुत्र कहलाता है परंतु ये वास्तव में तुम्हारा ही भाई है, परंतु फिर भी तथा अन्यान्यपि योद्धवीरा, इन सारे योद्धाओं के साथ साथ जो दूसरे भी बड़े बड़े योद्धा हैं, मया हतास्तम, मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, मेरे द्वारा हतांश पहले ही मारे जा चुके हैं, तो क्या करो, आपको त्वम यानी कि तुम जहिमा व्यतिष्ठा, तुम खाली मारो, तुम खाली एक जैसे इंस्ट्रूमेंट, गोली का बटन दबा के उसको गोली निकलनी है, गोली का कोई काम नहीं होता, मारने वाला कौन है? जिसने ट्रिगर दबाया होता है। तो गोली क्या है, वो खाली उसको जाके लगती है, वो मर जाता है, लेकिन काम किसने किया? जिसने बंदूक चलाई है। तो भगवान कहते हैं ये मारने का काम मैंने पहले से ही कर दिया, माया हतास्तम, मैंने पहले ही कर दिया, तो तुम क्या करो, जही जाओ उनको मारो। मां व्यतिष्ठ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है, युद्ध स्वजेतासी, तुम खाली युद्ध करो। तुम, ये मेरी योजना है, ये मेरी प्लानिंग है, और मैंने अपनी योजना से सारा काम कर लिया है, तुम खाली युद्ध करो, और युद्ध स्वजेतासी, तुम जीत जाओगे अपने सारे रणे सपत्ना, अपने सारे जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं उनसे जीत जाओगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अगर सारे योद्धा भगवान ने मार ही लिए हैं, तो फिर अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? अर्जुन को रहने दे, भगवान को बोले, अर्जुन इसे भी बोले भगवान को कि देखो तुमने पहले से ही कृष्ण साहब को मार ही दिया है ना, तो फिर मुझे यूज क्यों कर रहे हो, है ना? तुम जिस तरह से तुमने पहले से योजना बना दी है, तुम ही मार डालो इनको, मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है, मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे रहने दो। लेकिन नहीं, वास्तव में भगवान यहाँ पर अर्जुन को भक्ति सिखा रहे हैं, क्योंकि भक्त जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है भले ही भगवान करने वाले हैं, हर एक वस्तु पर भगवान का कंट्रोल है, हर एक कार्य भगवान की योजना के अनुसार होता है, लेकिन हर एक भक्त का यह कर्तव्य है, हर एक भक्त की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भगवान की योजना है उसको कंप्लीट करना, उसको पूरा करना वो अपनी, अपना कर्तव्य समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपना वास्तविक कार्य एक भक्त का यही होता है कि मैं कैसे भगवान की योजना को पूरा करूं। और भगवान की योजना क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें शुद्ध गुरु बताएगा। एक शुद्ध गुरु का जो आदेश होता है तो वो उसमें और भगवान के आदेश में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपा जी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक योजना भगवान के द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे श्रेय, उसका श्रेय दे देते हैं। ये भगवान के कार्य करने की शैली है, ये भगवान का स्टाइल है। करते वो स्वयं है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले वो स्वयं है, जो कुछ भी योजना है भगवान ने बनाई है वो सब भगवान ही के कृपा से हो रहा है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा होता है। लेकिन जो भक्त भगवान की इच्छा अनुसार उन योजनाओं का पालन करते हैं, जैसे आज अगर श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका के इतने हिप्पी लोगों को जिन्हें ना शास्त्र के विषय में पता है, ना धर्म के विषय में पता है, ना सनातन धर्म के विषय में कुछ पता है, लेकिन उनको भी कृष्ण भक्त बनाते हैं, तो ये वास्तव में भगवान की योजना है और ये भगवान का ही कार्य है। आज से 500 साल पहले ही भगवान ने आके कह दिया, पृथ्वी त्याचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैबे मोरा नाम, कि पृथ्वी पर जितने ही नगर और गांव हैं वहां पर मेरे नाम का प्रचार होगा। किसने कह दिया? महाप्रभु ने कह दिया पहले आकर। और फिर भी श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन से निकलते हैं, इतनी जरा अवस्था में वो एक पानी के जहाज में बैठकर जाते हैं जहां पर उनको 3 हार्ट अटैक आते हैं, और वे वहां से वो जाते हैं अमेरिका के ऐसे कंडम सिटी में जहां पर केवल इंद्र तृप्ति ही जीवों का लक्ष्य है, और वहां पर जाते प्रचार करने के लिए। किसी ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी जब ये भगवान की योजना है कि इस संसार में प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर में भगवान का नाम रटन होना चाहिए, ये भगवान की योजना है, तो आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान को करना है तो किसी न किसी तरीके से तो भगवान कर ही लेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों अपनी इतनी सुंदर वृंदावन की लाइफ को छोड़कर यहाँ पर आए हो अमेरिका में परेशान होने के लिए? यहाँ पर तो ना आपको कोई रिस्पेक्ट, कोई ना तो कोई आदर मिलेगा, ना कोई आपकी बात को सुनेगा। आप तो ऐसे यहाँ पर तो खाने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। आप तो शुद्ध शाकाहारी हो, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हो, तो यहाँ पर तो आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि ये मेरे भगवान की योजना है। भगवान आए थे 500 साल पहले, उन्होंने जितना करना था वो करके गए हैं। अभी बाकी जिम्मेदारी वो हम भक्तों के ऊपर छोड़ के गए, करना आज भी उन्हीं को है। लेकिन क्योंकि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। मुझे पता है मुझे यहां पर कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये मेरे भगवान की योजना है और मैं इस योजना में सहभागी होने का कार्य करना चाहता हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान की इच्छाओं की योजनाओं को पालन करने का प्रयत्न करते हैं, बस भगवान उनको श्रेय दे देते हैं, बाकी करते वो स्वयं हैं, अपने सारे कार्यों को वो स्वयं ही पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः जीवन को इस प्रकार से गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करे। आज हम कौन सी कॉन्शियसनेस में कार्य कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इंद्र तृप्ति। मैं कैसे अपने शरीर को आनंदित करूं, मैं कैसे अपने व्यक्तिगत, आज कोई हर कोई जो है ना अपने व्यक्तिगत लाभ को देखता है, लेकिन वास्तव में कर्म का कौशल, कर्म की सुंदरता क्या है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो ये भगवान की प्रसन्नता किस कार्य में है वो कैसे पता चलेगा? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान को जानो। ये केवल भगवान के माध्यम से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान तो भगवान हैं, वो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमें तो कोई शुद्ध गुरु आके जब बताता है कि ये भगवान है और इनकी इच्छा ये है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कैसे हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें। केवल गुरु ही हम पर कृपा करता है, और गुरु कब प्राप्त होता है? जब भगवान की कृपा होती है। ये दोनों चीजें परस्पर एक साथ चलती हैं। जब भगवान देखता है कि एक व्यक्ति जो कि कई कई जन्मों के दुखों को सहते सहते अब थक गया है, अब वो वास्तविक आनंद की खोज कर रहा है, तो उसे सच्चे गुरु महाराज से मिला देते हैं। भगवान देख रहे होते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं, कोई दूर थोड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तो समस्त जीवों के हृदय में रहता हूँ, तो क्या भगवान नहीं जानते कि तुम्हें किसकी जरूरत है? तुम भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास आए हो या वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हो? भगवान जानते हैं, और जब भगवान जान लेते हैं तो आपको ऐसे ही गुरु महाराज से मिलाते हैं। और भगवान जब जान जाते हैं, जब आपके हृदय में केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, तब भगवान आपको शुद्ध गुरु से मिलाते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। धन प्रदान करना भगवान की कृपा नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य या यश प्रदान करना भगवान की कृपा नहीं। महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जीव। वास्तव में भाग्यवान जीव वो है जिसे गुरु कृष्ण कृपा पाई है। पहले गुरु प्राप्त करते हैं कृष्ण की कृपा से, और फिर गुरु की कृपा से प्राप्त करते हैं भक्ति लता बीज। आज हम कितने सौभाग्यवान हैं जो एक शुद्ध गुरु के द्वारा हमें भक्ति का यह बीज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु के माध्यम से ही भगवान को जाना। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती हैं, और भक्तों की योजनाएं उनकी योजनाएं हैं। भगवान की योजनाएं केवल गुरु की कृपा से समझ सकते हैं। आज हमें गुरु केवल यही बताते हैं, जो शुद्ध सतगुरु होगा वो यही बताएगा कि भगवान की योजना ये है कि तुम जन्म मरण के चक्कर से बचकर मेरे पास आ जाओ। और उसके लिए भगवान बारंबार कृपा करते रहते हैं। भगवान थकते नहीं हैं, वो करुणा के सागर हैं,
वो बार बार एक जन्म में आपको गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा यह ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल मुझे प्राप्त करना है। उस जन्म में नहीं सीखते, दूसरे जन्म में भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे होते हैं, उसमें भी हमारी सहायता करते हैं और बार बार मत्त स्मृतिर मोह अपोहनम च, वो हमें बुद्धि देते हैं, स्मृति देते हैं, पिछली सारी बातें भुला देते हैं कि अब आ जाओ मेरी शरण में, क्योंकि तुम इस संसार में रहकर कभी दुखी नहीं। भगवान तब तक परमात्मा के रूप में आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक कि आप उनको प्राप्त नहीं कर लेते हो। वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो जीव आत्मा इस भौतिक जगत में आकर गिर गई है उसे अपने धाम में लेकर जाना, लेकिन हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान की बात को सुने। हम भगवान की बात को समझ नहीं पाते, इसलिए एक शुद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि शुद्ध गुरु के द्वारा ही हम भगवान की योजनाओं को समझ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष की में विजयी हो जाए। वास्तव में ये जीवन एक संघर्ष है, ये जीवन बार बार जन्म मरण का चक्कर है, ये जीवन एक ऐसा गेम है जैसे हम देखते हैं ना सांप सीढ़ी का गेम, जो एक लूडो होता है ना उसके पीछे एक सांप सीढ़ी का गेम होता है। कभी हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो कभी अजगर जो है वो हमें निगलता है और हम नीचे आ जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बताएंगे अभी चैप्टर नंबर 15 में कि ये जो संसार है ना वो एक उल्टा वृक्ष है और उस उल्टे वृक्ष में जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहा है। क्या कर रहा है? उद्वम गच्छन्ति सत्वस्तो मध्य तिष्ठस्ति राजसा जगन्य गुण वित्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। कभी वो अच्छे कार्य करता है ऊपर चला जाता है, कभी वो रजोगुणी कार्य करता है तो धरती पर रह जाता है, कभी तमोगुणी कार्य करके नरक में चला जाता है। इस तरह आना जाना तो उसका लगा रहता है, लेकिन वास्तव में करना क्या है उसको भगवान बताते हैं 15.2 में। अश्वत्थमेनम सुविरोढमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा। अश्वत्थमेनम सुविरोढमूलम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी बहुत ही भयानक जड़े हैं, जिसमें तुम जकड़े जा चुके हो, अब क्या करो? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस भौतिक जगत में जिन जिन वस्तुओं में जिन जिन व्यक्तियों में तुमने अपनी आसक्ति जमा रखी है ना, वहां से उसको निकालो असंग के शस्त्र से, डिटेचमेंट के शस्त्र से। उसके बाद केवल डिटेचमेंट प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, आगे भगवान बताते हैं फिर क्या करना है तुमको। तत्तः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः। फिर उसके बाद तत्तः पदम तत् उस जगह को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, परिमार्गितव्यम उस जगह, वो जगह जो उसकी खोज करो। परिमार्गितव्यम का मतलब होता है उस जगह की खोज करो, यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूयः, जहां पर जाकर तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। और उस जगह के विषय में जब तुम्हें पता चल जाए फिर क्या करो? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, ये भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं उस पुरुष की शरण में जाओ, यत्ता प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिसके कारण अनेकों अनेकों जीव अनादि काल से प्रत्येक वस्तु जो है वो उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो रहा है, उस भगवान को जानो, उसकी शरण में जाओ, यही मैं चाहता हूँ। तो भगवान की योजना क्या है कि सब जीव जो है वो भगवान की शरण में जाए ताकि वो जन्म मरण के चक्कर से बच सके। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान की इस योजना को सफल करने के कार्य में जुट जाना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं, मया हतास्तुम जहिमा वितिष्ठ युद्धस्व जेता सिराए सपत्मान, तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे इस कार्य में जो मार्ग में ये बाधाएं हैं वो कैसे दूर होंगी। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सारी बाधाओं को दूर करूंगा। तुम्हें केवल क्या करना है? युद्धस्व, तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। जेता सी, तुम जीत जाओगे, बेफिक्र हो जाओ, किस में जीत जाओगे? रणे सपत्नम, जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो कितने ही महाबलवान क्यों ना हो, द्रोण और भीष्म जैसे अजय शत्रु क्यों ना हो, जयद्रथ जैसे वर प्राप्त किए हुए क्यों ना हो, लेकिन तुम यदि मेरे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। हरे कृष्णा, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।